हमेशा से यूं नहीं कर पाते थे। ये जो है असल में क्या है, गौर कीजिएगा, ये दरअसल में ये बात करना चाहता है कि पहली बात तो ये कि ये जो गर्दन में उन्होंने तोक खुद डाला है या अल्लाह ने नस्बत अपनी तरफ दी कि हमने डाला है, क्योंकि अल्लाह ताला मालिक को मुख्तार कुल है तो नस्बतें हमेशा अपनी तरफ देते हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये असल में झूठी आदाद और रसूमात की जंजीरें एक तोप की शक्ल में उन्होंने अपने गर्दन के इर्द गिर्द मजबूती से डाली हुई थी और उसके ऊपर वो गर्दन को यूं उठा के रखते थे और उन झूठी आदाद और रसूमात और तकलीद के तोक और जंजीरों की वजह से वो सच्चाई को देख नहीं पाते थे जो उनके सामने होती थी। बिल्कुल ये एक अलामती तौर पे बयान कर रहा है कि जो चीज मेरे सामने है उसे मैं यूं तो नहीं देख सकता, मुझे यूं देखना पड़ेगा। कह रहा है कि वो जो सामने पड़ी हुई चीज उसे नजर नहीं, उन्हें नजर नहीं आती है, लेकिन दूर जो उनकी आदात और रसूमात और बाप दादाओं की जो रिवायात उन्हें आई हैं उनको, वो उनके ऊपर उनकी निगाह है यूं गर्दन, क्योंकि उन्होंने उस रसूमात को अपने लिए गर्दन की एक तोक बनाया हुआ है जिसकी वजह से वो यूं खड़े हैं और सामने पड़ी हुई सच्चाई नजर नहीं आती, लेकिन बाप दादाओं की वो जो आदाब और रसूमात हैं वो जो है नजर आती है। मसलन एक और जो रिवायात के अंदर आया है वो ये है कि कभी ये ऊंट की तरह जो है ना, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे ऊंट है, एक कैमल जो है आपको पता है कि वो बड़ा मुश्किल होता है उसे यूं झुक कर पिक कर लेना, उसे बैठना पड़ता है जमीन के ऊपर, कहने की हक के सामने कभी ये झुक नहीं सके, सरेंडर नहीं कर सके। हक और सच के सामने इंसान सरेंडर कर लेता है, मान लेता है, मतलब सरेंडर का मतलब क्या है, मान लेना है, हक को मान लो, सरापा तस्लीम होना, इस्लाम का मतलब ही इसी से निकला है, जहां सलामती है वहां तस्लीम है। और आला तरीन जो मरहला आया है ईमान का वो तस्लीम है, जैसे कि सैयद शुहदा अलैहि सलाम ने करबला में फरमाया रिजन बिकज़ाइक व तस्लीमन लिअम्रिक ला माबूदा सिवाक, ये आखिरी जुमले हैं इमाम के। तो तस्लीमन लिअम्रिक, अम्र खुदा के सामने सरापा तस्लीम होना, अम्र खुदा के सामने अपने नजरियात लाना नहीं है, कहेंगे नहीं ये तो हम पिछले 100 साल से ये हमारा कदीमी चला रहा है, भाई आज आप कह रहे हैं इसको छोड़ दो, यानी खुराफाती आइडियालॉजीज और नजरियात और थ्योरीज की जंजीर और तोक को उन्होंने अपने गले के इर्द गिर्द इस तरह जकड़ा है कि अब वो सच जो अंबिया लेकर आए हैं, औलिया लेकर आते हैं उनके सामने और कहते हैं कि जनाब ये असल में सच्चाई ये है, ये जो आप करते आए हो ये गलत है, तो वो उनके लिए मानने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो नहीं कर सकते हैं, हक को मानते नहीं है। وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनके सामने एक दीवार खड़ी कर दी है और उनके पीछे भी एक रुकावट और दीवार बनाई है और दरहकीकत उनको उनके ऊपर पर्दा डाल दिया है एक तरह से, فَأَغْشَيْنَاهُمْ, तो उनके ऊपर पर्दा डाला, अगशय गशी से, गशी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, फारसी में भी इस्तेमाल होता है, तुर्की में भी गालिबन इस्तेमाल होता है, अरबी जबान का लफ्ज है, गशी छा जाना यानी बेहोश हो जाना, यानी बेहोशी में क्या होता है इंसान को पता नहीं चलता दाएं बाएं ऊपर नीचे अतराफ में क्या हो रहा है, तो कहने एक ऐसी कैफियत में वो लोग हैं, फॉर्मुला वो देख नहीं सकते, मुमकिन है देख नहीं सकते, ये नहीं कि फिजिकल आंख से नहीं देख सकते, बसीरत नहीं है उनमें। बसीरत का मतलब क्या, हमने पहले भी डिफाइन किया, बसीरत जो है सच और झूठ में पहचान कराती है, बसीरत का मतलब ये है ऑन द टाइम, दुरुस्त टाइम में, दुरुस्त मौके पर सच्चाई और झूठ की पहचान जो कर होती है वो बसीरत कहलाती है, और दूरस निगाहें होती हैं, प्लानिंग पर एक लंबा चैप्टर है उसके अंदर हम नहीं डालेंगे। फरमाते हैं उनके ऊपर पर्दा डाल दिया, इस आयत के पीछे कुछ शान नुजूल भी हैं, कुछ बातें हैं, जैसे कि फरमाया अल्लाह के रसूल मस्जिद में थे, अबू जहल और एक टीम कत्ल करना चाह रहे थे अल्लाह के रसूल को, और जब कत्ल करने के करीब आए तो फाग़शैनाहुम फहुम ला युबसिरून, बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि ये आयत रिफ्लेक्ट कर रही है कुछ और वाकयात को, जिनमें से एक जो है शब हिजरत जब पैगंबर खुदा को कत्ल करने के लिए ये आए और अल्लाह के रसूल उनके दरमियान से निकल के चले गए, लेकिन वो देख नहीं सके, इसलिए कि वजअलना मिन बैनिहिम सद्दन वमिन खल्फिहिम सद्दन फख्शनाहुम फहुम ला युबसिरून, यानी वो देख नहीं सके, उनके सामने रुकावटें आई। ये शान नजूल कुछ भी हो सकता है, लेकिन आयतें आपको पता है कि किसी एक वाकया और शान नजूल के उनका सबब तो हो सकता है नाजिल होने का, लेकिन मैसेज सिर्फ उसी तक लिमिटेड नहीं रहता, ये कोई ज्योग्राफिकल या टाइम फ्रेम के अंदर एक मैसेज लिमिट नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, इलायोम अल-क़ियामा है, और हर किस्म के जुग्राफिया के लिए, आलमीन के लिए, उदल लिल आलमीन है कुरान का, ये हिदायत पूरी आलमीन के लिए और हमेशा के लिए है। तो इसको आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बस ये इधर यूं हो गई थी और गई थी। जैसे हमारे बाद जाकिरीन मेंबर पे बाज आयतों को लेके आते हैं और स्पेसिफाई कर देते हैं और बस सलाम, तो उस आयत की तो उस टाइम के लिए थी, तो आज के लिए तो इस आयत का कोई फायदा नहीं बनेगा। तो इस तरह की बात चीजें हो जाती हैं। लिहाजा असल में कहना क्या चाह रही हैं, इन शान नुज़ूल की हमने थोड़ी सी बयान किया, अब आते हैं जरा पे मैसेज क्या है आयात के अंदर, अब गौर कीजिएगा। असल में हो ये रहा है कि वो अपनी उस गलत आइडियोलॉजी की वजह से, यानी मतलब क्या, उस आइडियोलॉजी के दो नुकसान हो रहे हैं उनके सामने। एक क्या हो रहा है, एक तो ये है कि पीछे जो है ना यानी माजी में जो एक गलत ख्याल और गलत आइडियोलॉजिकल बेस बना है उनकी अकीदे के अंदर, वो उसके ऊपर जो है ना पक्का हो चुके हैं, वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, दीवार बना चुके हैं सच के आगे, पिछली माजी की गलतियों को लेकर उसको एक आइडियोलॉजिकल बेस बना के दीवार खड़ी कर चुके हैं सच के आगे। एक बात तो ये आ गई, अब गुज़श्ता से इबरत नहीं ले सकते वो, क्योंकि उन्होंने तो पक्की कर दिया दीवार। अब आते हैं आइंदा के लिए, आइंदा के लिए क्या है कि बड़ी झूठी ख्वाहिशात हैं उनकी, झूठी ख्वाहिशात कायम की हुई। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक खुतबा है नाजुल बलागा में, अलबत्त बहुत सी जगहों पर गुफ्तगु किया है, खुतबा है स्पेसिफिकली उम्मीदें और ख्वाहिशात के ऊपर, कुछ नूरानी जुमले भी हैं जो सेलेक्टिव आखिरी जो पोर्शन है उसके अंदर कलिमात क़िसार जिसको हम कहते हैं, उसमें भी फरमाते हैं कि ख्वाहिशात जो है ना पूरी नहीं होती कभी भी। उर्दू का नहीं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, क्योंकि जितने भी निकले फिर कहते हैं कि उन्होंने आगे के लिए भी ख्वाहिशात की एक लंबी सी दीवार खड़ी की गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, दुरुस्त जो मेथोडोलॉजी है और दुरुस्त जो रविश है जिंदगी है वो भी नहीं अपना सकते हैं और सही आइडियोलॉजी भी नहीं अपना सकते, क्योंकि उन्होंने जो अपनी झूठी आइडियोलॉजी है उसके आगे पीछे दाएं बाएं ऐसी झूठी जो है क्या कहते हैं वो खड़ी कर दी है। नतीजा क्या निकलता है उनके सामने, ऐसे लोगों के सामने जो खुराफात के असीर हैं, पिछली लोगों की अंधी एतकादात के ऊपर उनको पूरा यकीन है और नई चीज जो है जो पैगंबर लेके सच और हक लेके आ रहे हैं उसे एक जदीदियत के या उसके टाइटल के तहत वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे लोगों के सामने हजारों साइंस, हजारों बोर्ड, हजारों गाइडलाइंस, हजारों लाइट्स आती हैं जो उनको डायरेक्शन दे रही होती हैं, कहते हैं कि तुम गलत जा रहे हो, अभी तक जो हुआ है वो गलत है, लेकिन वो कबूल नहीं करते। इनमें से बाज लोगों के बारे में कुरान ने कहा कि ये चोट खाने के बाद फिर होश में आ जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं वो सब कुछ जो था वो गलत है, हम जो कह रहे हैं बाप दादाओं का है तो ये गलत है, बाप दादा गलत है, हम भी गलत हैं, ये हमें गलती अपनी सुधारनी चाहिए। कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं वो करते, वो बल्कि रेजिस्टेंस करते हैं मजीद अपने बातिल के ऊपर और डटना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अगली आयत जो नंबर 10 में अल्लाह के रसूल फरमाया सवाउन अलैहिम, फर्क नहीं करता ये जो कैटेगरी है, वो जो कैटेगरी है जो जाहिल नहीं मसलन कम अकल नहीं बल्कि जामिद फिक्र है, जामिद फिक्री खवारिज में थी, जामिद फिक्री आपको तालिबान में भी नजर आएगी, अभी तो तालिबान मॉडर्न हो गए हैं, काफी चेंजिंग्स आ गई है उनके अंदर, जामिद फिक्री खवारिज के अंदर थी। एक होता ना जाहिल होना, ला इल्म होना, या हमारे पाकिस्तान में हम सब, मैं खुद एक देहात से ताल्लुक रखता हूँ, देहाती होना ऐब नहीं है, पिंडू होना, पिंडू एक एक, एक, एक सिफत का नाम है, यानी बेअकल होना, अकल को यूज न करना, जट जिसको कहते हैं पंजाबी जबान में गालिबन, और भी इस तरह है कि आदमी अकल को इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, सामने पड़ी हुई चीज को समझने के लिए अंडरस्टैंड नहीं करता है, कहता सवाउन अलैहिम, फर्क ही नहीं करता ए अल्लाह के रसूल, अंजरतुम, आप उन्हें होशियार करो, अलर्ट कर दो, बार बार बताओ, बार बार समझाओ, डराओ, कहो कि देखो ये होने जा रहा है, देखो ये लॉजिक है, देखो 2+2 की तरह ये मसला क्लियर है, आप क्यों अड़े हुए हो, क्यों अटके हुए हो, क्यों जामिद फिक्री जमूत के शिकार हो चुके हो, प्लीज वो करो। कहता है अंजरतुम ला युमिनून, नहीं फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आगे फरमाते हैं देखें फर्क किन को पड़ेगा, हाँ उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे, इन्नमा तुनज़िरु मन तबअ अज़्ज़िक्रा व खशिय अर्रहमान बिलगैब फबशिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज़्रिन करीम, हाँ कुछ लोग हैं, आप उन लोगों को एक्सेस करें, उन लोगों को वो करें कि जो नसीहत की पैरवी करेंगे, वो कुछ समझेंगे, लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, अकल को इस्तेमाल करेंगे, और जो रहमान है गैब के अंदर, जो इतना रहीम परवरदिगार है, उसकी तरफ वो अलर्ट मुतवज्जे हो जाएंगे और उसके सजा व जजा के हवाले से होशियार हो जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे कि सजा मिल सकती है। और ऐसे लोगों के लिए जो है एक मगफिरत भी हमने रखी है, वला उन्होंने कुछ टाइम गलतियां की हैं मुख्तलिफ किस्म की, और जो है ऐसे लोगों के लिए अजर अजीम भी हमने रखा है। जिक्र से मुराद यहाँ पर क्या है, इन्नमा तुन्दिरु मन तबअ ज़िक्र व खशिया रहमान। ये जिक्र से मुराद यहाँ पर कुरान मजीद है, जिक्र से मुराद नबुवत और इमामत है, और भी आयतें हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जिक्र जो है वो जो है कुरान, यानी वो जो है मन तबअ ज़िक्र, जो जिक्र की इत्तबा करते हैं, यानी अब लफ्जी तर्जुमा करूँ तो ये जिक्र की इत्तबा मतलब किसकी इत्तबा, कुरान मजीद की इत्तबा करते हैं, नबी की इत्तबा करते हैं, और जो है आले नबी की इत्तबा करते हैं, दूसरे अल्फाज में दीन की इत्तबा करते हैं। दीन मतलब वही है ना, खुदा, नबुवत, इमामत, कयामत और दीगर चीजें जो हमारे पास हैं, तो कह रहे हैं कि इसकी दुआ करते हैं। कुरान मजीद ने एक और नुक्ते की तरफ इशारा किया है इसी आयात के अंदर भी, इससे भी ये नुक्ता बरामद होता है जो बहुत अहम है। इंसान जो है ना दुनिया में बहुत से इंसान जो इस तरह जो सच और हक को नहीं मानते और कहते हैं नहीं जी ये तो कदीमी है, ये तो पुराना है, ये तो शुरू से होता आ रहा है, शुरू से ऐसे ही हमने किया था, हमारे बाप दादाओं ने ऐसे ही किया था, उससे पहले हमारे मोहल्ले में यही चल रहा है, पिछले 100 साल से, 200 साल से, 300 साल से, 400 साल से, नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन, इन लोगों के बारे में कहते हैं। इन लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है, गौर कीजिएगा, बहुत अहम है, के ऊपर जो आयतें हैं उससे कहते हैं सवाउन अलैहिम, और ऊपर की आयतों से कहते हैं ये दलील और मंतिक के पीछे नहीं जाते, शहवत और वहम और ख्याल के पीछे जाते हैं। इनके पास स्ट्रॉन्ग चीज क्या होती है, कोई दलील होती है जिसकी, यानी ये तो दलील नहीं हुई कि पिछले लोगों ने किया था तो बस वो ठीक ही है, ये तो कोई दलील नहीं होती ना, कहें पर भी ये तो प्रूफ नहीं होता, कोई एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने, कोई उनके सामने कोई ऐसा लॉजिकल दलील है कि जैसे कहेंगे, जैसे कहें 2+2=4 की तरह की कोई बात है कि जिसकी वजह से वो अड़े हुए हैं, अपनी जगह से हटने के लिए तैयार नहीं है, अपने मौकिफ और अपने जो है उसके अंदर इतने सख्ती दिखा रहे हैं कि मरने के लिए तैयार हैं, खवारिश की तरह गर्दने काटने के लिए तैयार हैं। अच्छा क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, हक उनके सामने आता है कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, इतनी सख्त गिरी है इनके अंदर, तो इसके पीछे मोटिव क्या कहता है, दो चीजें, वहम और ख्याल और शहवत। अब ये शहवत जब हम लफ्ज शहवत इस्तेमाल करते हैं तो हम अखलाकी और जिनसी मामला नहीं, खाना शहवत, शोहरत की शहवत, फिक्र की गलत उसमें जाने की शहवत, कहीं शहवत तो एक वसी मफहूम रखता है। तो कह रहा कि कोई दलील नहीं है, मसलन कुरान मजीद की एक और आयत है कि जिसमें फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। मुख्ताल, मुख्ताल खतल से है, खतल यानी जो ख्यालात और वहम का असीर होता है, यानी सच्चाई नहीं होती, देखो ना कि आप एनालिसिस करते हैं, प्रूफ होता है आपके सामने, एक सॉलिड चीज आप लेके आते हैं दलील के तौर पर, कुछ लोग ये दलीलों के पीछे नहीं, वो बल्कि ख्यालात के, वहम ख्यालात को गुमान के, जैसे आप देखते हैं यहाँ यूरोप में बहुत सारे इज़म्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उसके पीछे कोई बेस नहीं होती, कोई मजबूत दलील नहीं है, वो जस्ट उनकी कुछ नजरियात हैं और एक दूसरे से कंट्रडिक्शन भी रखते हैं, वो उस नजरियात के पीछे जाते हैं। मसलन अगर फ्रॉइड साहब कहता है कि मॉरल जो यहाँ पर कल्चर है यूरोप का, इसको चेंज करने के लिए जरूरी है कि हम क्योंकि फ्रस्ट्रेशन और जो रिलीजियस के ख्यालात हैं, खुदा का कॉन्सेप्ट है, माआत का कॉन्सेप्ट है, ये क्योंकि असल में तो कोई रियलिटी रखता नहीं है, और इसके एक रीजन ये है कि लोग अगर जो है फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाएं, सेक्चुअल सेटिस्फिकेशन ना हो उनके सामने, तो उसकी वजह से जो है वो अब उसको अपनी नेचुरल जरूरत को पूरा नहीं कर सकते लीगल रास्ते से, क्योंकि चर्च ने पाबंदी लगाई है, तो अब उसको रिलैक्स करने के लिए उन्होंने एक ख्यालात अकायद बनाए हैं, खुदा, माआद, कयामत, इस तरह की एक थ्योरी पेश की, क्योंकि वो साइकाट्रिस्ट था, और उसने इस थ्योरी के बुनियाद पर कहा, तो फिर हम क्या करें? कहा कि देखो ये चर्च बंद हो सकता है, ये खुदा का तस्वीर खत्म हो सकता है, ये मिनून बिलगैब मर सकता है, फरिश्तों का कॉन्सेप्ट, ये जो मेटाफिजिक्स जितने भी मसाइल हैं या माबाद तबियात हैं, ये सब फिनिश हो सकते हैं, कि क्या करें? फिर हम कहते हैं आप जो मॉरल जो एथिक्स है या सेक्चुअल जो चीजें हैं इनको फ्री कर दें, इनको कहा कि आजाद कर दें। शादी क्या होती है? शादी का बंधन मुकद्दस, ये क्या होता है कि नामहरम महरम का कंसेप्ट, हया इफ्फत पाकीजगी, ये आप कैसे खत्म कर दें इसको? कहा कि जहां भी इस ये चीजें नहीं होंगी ना, आदमी होगा रिलैक्स, तो फिर इस तरह की चीजों के पीछे नहीं जाएगा, कोई खुदा की तलाश में नहीं जाएगा, गैब की तलाश में नहीं जाएगा, आप कर दें इनको। ये एक बहस, ये क्या थे? ये वहम गुमान था, ये वही शहवत है जिसके ऊपर हमने थोड़ी देर पहले बात किया। फरमाया इन अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, खुदा जो ख्यालात और शहवतों और क्या कहते हैं विदाउट किसी सॉलिड बात के जो है ना, जो वहम व गुमान का असीर होता है, ये जो है खुदा कहता है कि इसको ला युहिब्बु, पसंद नहीं करता, ये ख्यालात का असीर है। ये जैसे आदमी सोचता है ना, ख्यालात में खुद को बादशाह बना देता है या खुद को मिलियनर या बिलियनर बना देता है, समटाइम सोचता है, एक एज होती है, उस एज में इस तरह के ख्यालात आते हैं। या मसलन जैसे मैं मिसालें दे रहा हूँ थोड़ी सख्त किस्म की, आप लोगों को पता है कि मेरा मिजाज जो है डायरेक्टली मैं बहुत कम ही क्रिटिसाइज करता हूँ बाज चीज़ों को, लेकिन इस वक्त हम जिस तरह की सिचुएशन में है, यहाँ जो एक वर्चुअल वो है चल रहा है दर्स, तो मैं भी जुरत कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखें जैसे कहते हैं जी कि आजकल ये जो है ना ये फैशन में नहीं है, तो ये आउट ऑफ फैशन है, तो लिहाजा या आज स्टाइल ये स्टाइल नहीं चल रहा आजकल, क्योंकि देखें बात ये है कि सब ऐसा ही कर रहे हैं, अब किस किस को समझाएं, सब ही यही चल रहा है, अब ये शुरू हो चुका है, ठीक है कंप्रोमाइज करना पड़ेगा हमें भी आजकल, वैसे ये फैशन में भी नहीं है, जमाना भी ऐसे आया है। पुराने जमाने में ग्लव्स इस्तेमाल होता था, हमारी एज तक अभी भी होता होगा, जमाना ही बदल गया जी। वो जमाना क्या है? कोई ऊपर से आई हुई चीज है, जमाना यानी मैं और आप से जमाना बनता है। कहते हैं सोसाइटी की जो इकाई है वो अफराद है, अफराद से सोसाइटी बनती है, सोशियोलॉजी के अंदर आप पढ़ लेते हैं, तो इस तरह की जो मुख्तलिफ चीजें होती है ना, कहते हैं ना आवा साहब देखें अब ये ट्रेन है, ट्रेन चल पड़ा है साहब, यहाँ पर जो है ना हमारे पास ट्रेन है कि हम हमेशा जाहिल लोगों को मेंबर पर बिठाते हैं। माजरत के साथ मैं खुद जो है खुद को आलिम नहीं समझ रहा, मैं स्टिल तालिबे इल्म हूँ। हम ऐसे लोगों को यहाँ पसंद करते हैं जो नारे लगवाए हैं ज्यादा से ज्यादा, कि उसके बगैर बानियान मजलिस समझते हैं कि लोग भी नहीं आते, अट्रैक्ट भी नहीं होते, चलता नहीं है, और इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। ट्रेन है ये, यहाँ का ये रिवायत चली आ रही है जी, ये इसी तरह चल रहा है, आजकल चल रहा है, ये दलील है? ये कोई मंतिक है? ये कोई सॉलिड बात है? अल्लाह ताला देखें किस तरह मुखातब फरमाते हैं, कह रहे हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर, कहता है वल्लदी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशाउ वल जुल्फा, कहते हैं कि अल्लाह के वजूद की दलील चाहते हो तो देखो ये इतनी बड़ी मजबूत दलील है, रहम मादर में पानी से तुम्हारी नक्श निगारी निगार करता है, कायनात को की तरफ तुम देखो उसकी हिकमत तुम्हें दिखाई देगी, मजबूत दलीलें दलीलों के साथ बयान करता है। नहीं कहता कि दो खुदा हो नहीं सकते, अगर दो खुदा होते तो ये होता, लफसदता फलान फलान फलान। आप देखिए हर चीज को जो बयान कर रहा है कुरान मजीद और अल्लाह सुब्हानहु तआला, और हमारे मजहब में सबसे अहम तरीन जो इम्तियाज है, मैं खासकर फिक्र जाफरिया की बात करूंगा, कि फिक्र जाफरिया के कवानीन को, उसके अकायद को, उसके अखलाकियात को अगर आप पेश करेंगे तो कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि ये लॉजिकल नहीं है, नहीं कह सकता। हाँ प्रेजेंट करने वाले के ऊपर है, अगर मुझ जैसा नाअहल बंदा मेंबर पे आके प्रेजेंट करेगा गलत तरीके से, एक लॉजिकल बात को भी जो है इलॉजिकल बना के पेश करेगा, तो वो मेरी गलती है, मेरे दीन के उस अकीदे के मसला नहीं है। लिहाजा वहम और ख्यालात के जरिए जो है के बेस पर आदमी को नहीं चलना चाहिए, बहुत ही जरूरी है कि वहम हो गुमान हो ख्याल की बुनियाद पर जिंदगी को और उसके अकायद को और जिंदगी के डगर को वो न दिया जाए, बल्कि इल्म यकीन और क्या कहते हैं मजबूत दलील और एविडेंट और प्रूफ और लॉजिकल दलाइल के साथ जो है इंसान को अपनी जिंदगी और अपने दीन के मसाइल को खड़ा कर देना चाहिए। इसीलिए आप अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे जो मसाइल आते हैं ना, कहते हैं एक और जो उस दिन भी बहस हो रही थी उसको थोड़ा सा टच करना चाहता हूँ और ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, वो ये है कि कहते हैं आसब सब यही कर रहे हैं, आसब अक्सर का फैसला ये है जी, मानना पड़ेगा अक्सर का फैसला। अच्छी बात है कि चलो बहुत से लोग इत्तफाक कर गए हैं किसी एक चीज के ऊपर, ये तो पॉजिटिव पहलू है, अक्सर मतलब ये होना कि भाई अक्सर लोगों का एक इतफाक हुआ है एक अच्छे काम के ऊपर, अक्सर मोमिनीन ने इतफाक कर लिया है। हाँ, ये पहलू बहुत अच्छा है, नूरानी है, बहुत अच्छी बात है कि इतफाक कर लिया आपने। अब आते हैं किस चीज पर इतफाक हुआ है, जरा उसको भी देखते हैं, क्योंकि हर चीज के ऊपर इतफाक होना हुसन नहीं है, अच्छाई नहीं है। इतफाक होना अच्छाई है, लेकिन हर चीज के ऊपर इतफाक होना अच्छाई नहीं है। सारे मोमिन इकट्ठे होकर कहें जी इतफाक करते हैं कि आज के बाद जो है फर्ज करें नमाज जमात नहीं होगी यहाँ पर, तो ये कोई अच्छा इतफाक कहलाएगा? आगा साहब, 99% लोगों ने वोट डाला है और कहा है नमाज जमात बंद कर दिया जाए, तो क्या ये इतफाक अच्छा इतफाक है? ये अक्सरियत का फैसला अच्छा फैसला है, अक्सरियत ने कहा है। आगा साहब, अक्सरियत चाहती है कि मेंबर पर फला जो मुनहरिफ आदमी है, गलत है, ना इल्म पढ़ा है, ना सीखा है, ना दो जानू होकर किसी उस्ताद के पास अरकरेजी की है, यहाँ पर जो है एक नर्स के लिए पता नहीं 5 से 6 साल का कोर्स करना पड़ता है, उसने तो कुछ भी नहीं किया, एक इंजेक्शन लगाने के लिए एक आदमी को कम से कम कोर्सेज से गुजरना पड़ता है, उसके बगैर कोई उसको सर्टिफिकेट नहीं देता, कोई उससे इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई उससे मेडिसिन लेने के लिए तैयार नहीं होता, पट्टी बनने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन मेंबर रसूल पे दीन के लिए कोई भी आ सकता है, कोई मसला नहीं। एक बच्चा अगर रटा लगाकर आता है मेंबर पे तो आप बैठने दें, ठीक है, बच्चे को आप जश्न में वैसे तश्वीक के लिए तकरीर करवा दें अलग मौजू है, लेकिन आप उसको बिठा के फिर जाकिर और खतीब और अल्लामा फल्लामा के टाइटल के साथ बिठा दें, ये कोई अक्सरियत, अब मान लो अक्सरियत डिमांड कर रही है जी, अंजुमन क्या करे? अंजुमन असीर है, गिरफ्तार है, क्या करे? जो अक्सरियत ने डिमांड किया होगा सब, तो क्या अक्सरियत के इकट्ठे हर वक्त अक्सरियत अगर इतफाक कर लेती है किसी चीज के ऊपर तो ये दलील बनेगी कि वो सच है और हक है? ये मसला था इन लोगों का, कह रहे थे पैगंबर तुम बनी हाशिम ने ये शुरू किया हुआ है, बनी उमैया का ये नहीं, बनी तमीम, बनी तई, यो इतने सारे बड़े बड़े कबीले बैठे हुए यहाँ पर, मेजोरिटी तो तुम्हें मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ये हमारी दलील है, करो तुम तुम्हारा कबीला का वो भी पूरा कबीला तो तुम्हारा मानता नहीं, बनी हाशिम पूरे के पूरे भी तो तुम्हारे साथ एग्री नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम इसको दलील के तौर पर ले लेंगे? एक मजबूत दलील है, बहुत अहम है, लिहाजा ये एक और जहन में रखें। ये जो कहते हैं आगा साहब विलायत फकीह के बहस के अंदर आता है, अलबत्त ये मौजू हमारा नहीं है क्योंकि अक्सरियत का है, तो मैं टच करता हूँ, कहते हैं जी अक्सरियत अगर कबूल ना करें तो मौलाए कायनात को भी 25 साल जो है तन्हाई में गुजारना पड़ते हैं, और कोई मौला के साथ देने के लिए आता नहीं है कि आप कुएं में जाके फरियाद करते हैं, सर दे के चीखते हैं, और जनाब सैदा के साथ वो मशहूर मुकालिमा होता है, 1000 बार आपने सुना है कि फरमाया लोग आपको सलाम नहीं करते हैं, फरमाया बिन्त रसूल मैं सलाम करता हूँ, लोग मुझे जवाब नहीं देते हैं, तो अक्सरियत ने तो मौला का साथ नहीं दिया, उसके बाद भी किसी ने साथ नहीं दिया वगैरह वगैरह, तो आज आप बस अक्सरियत की अहमियत तो बनती है ना, इम्पोर्टेंस तो है, आप ऐसे ही सब कुछ वो निगलेक्ट ना करें, आप डेमोक्रेसी के एंटी तो नहीं है, इस्लामी जमहूरिया भी तो है, जमहूरिया इस्लामिया भी है, तो ये सारा आप कहाँ रखेंगे? जाहिर है इस मौजू के ऊपर ज्यादा जाएंगे तो तफसीर से हट के कहें और निकलेंगे, मैं सिर्फ एक बात का इशारा करना चाहता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट, अगर ये कोई सही तरह पिक कर ले तो मेरे ख्याल में सारी ये की है, असल में इस बहस को खोलने की जो ताला खोलने की जो की है वो ये है, देखें एक बात ध्यान में रखें, अक्सरियत की कबूलियत किसी चीज के इस बात के मरहले में अहमियत रखती है, ना उस चीज की सच्चाई को साबित करने के लिए कोई रोल प्ले करती है। मतलब क्या है सब? मतलब ये जाते हैं वहीं पीछे, अगर कुरैश की अक्सरियत अल्लाह के रसूल को बेनवान रसूल कबूल करती है तो रिसालत के उमूर और कामों में जरा हेल्प मिलेगी, अक्सर लोगों ने कबूल किया है, अब रिसालत का काम तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन अक्सरियत के कबूल करने से मोहम्मद अब्दुल्ला रसूल नहीं बनने वाले, या अक्सरियत के डिनाई करने से, रिजेक्ट करने से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की रिसालत छिनने वाली नहीं है, ये ज़हन में रखे। मतलब क्या है? मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु वसल्लमहु अलैहि अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, इस ये एक साबित शुदा बात है, मुसल्लमा बात है, इसके लिए अक्सरियत और अकलियत का कोई किरदार नहीं है, कोई रोल नहीं है। हाँ, अक्सरियत अगर इस बात को एक्सेप्ट करेगी तो कार रिसालत फैलता जाएगा, कार रिसालत में आसानी, इस बात सबूत का मतलब ये होगा, मौलाए कायनात को अगर अक्सरियत बेनवान मौला न मान ले तो इससे मौला की इमामत और विलायत में कोई फर्क, अक्सरियत के मानने से वो हासिल नहीं होती। अच्छा, ये बात जहन में है, ये आपके फिकी, ये आपके अकायदी प्रिंसिपल हैं, या प्रिंसिपल हैं। अब आते हैं जरा इधर, अगर एक मौलाना साहब को या एक फर्ज करें कि मेंबर पे आने वाले एक बंदे को जिसमें असल में एहलियत है ही नहीं, असल में वो सलाहियत है ही नहीं, असल में इल्मियत है ही नहीं, असल में परहेजगारी है ही नहीं, अक्सरियत के इकट्ठे होने से वो आलिम फाजिल मुतकी परहेजगार खतीब अल्लामा फल्लामा नहीं बनता। लेकिन उल्टा अगर एक आलिम दीन है, परहेजगार है, खतीब है, मौलाना है, अल्लामा है, साहेब फजल व करम है, अक्सरियत उसे ठुकराने से वो खत्म नहीं होती। ये अब अक्सरियत की बात समझ में आई। अक्सरियत का मतलब ये है, कहते हैं अक्सरियत की कबूलियत, मसलन कहते हैं कि फलां फलां चीज में शर्त है, जैसे विलायत फकीह और वगैरह और इमामत के निफाज, और इसके लिए इसीलिए विलायत तशरी, हमने कहा विलायत तशरी पूरी तरह नाफिज नहीं हो सकी, इसलिए नहीं हो सकी कि अक्सरियत ने कबूल नहीं किया। लेकिन अक्सरियत के कबूल न करने से क्या विलायत खत्म हो जाएगी, विलायत की सलाहियत चली जाएगी? ये नहीं होता। तो अक्सरियत की अहमियत इस माने में है। अब यहां पर हमने क्या किया, लिबरल डेमोक्रेसी को हमने लिया और ये कर लिया जी, क्योंकि अक्सरियत का फैसला सच है, सच्चाई को प्रूफ करता है, ये नहीं है। अक्सरियत के फैसले से सच और हक का फैसला नहीं होता। यह ऐसा नहीं होगा कि मेजोरिटी एक बात की डिसीजन ले ले, दैट्स मीन यही चीज सच है, यही चीज हक है, ये नहीं होता है। हमारी हम गलती कहां पर कर रहे हैं? हम अक्सर हमारे दीनी अदारों में भी ये प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं, हमारे दीनी अदारों के अंदर, अंजुमनों के अंदर, मसाजिद के अंदर, इमाम बारगाहों में, मदारिस में, हर जगह ये मसला बना हुआ है। अक्सरियत को हमने सच और हक का मैयार बना दिया है, ये नहीं है। किसने कहा? फर्ज करें 99% लोग एक तरफ खड़े हो जाते हैं, क्या उसके खड़े होने से सच झूठ बनेगा, झूठ सच बनेगा? नहीं, सच सच रहेगा, झूठ झूठ रहेगा। एक आदमी अगर खड़ा है, वो सच्चा है, सही कह रहा है, हक पर है, दलील रखता है, मंतिक रखता है, तो वो सही है अपनी जगह पर। तो लिहाजा वापस लौट के आते हैं ऊपर की आयत की तरफ, एक सलवात भेज लीजिए, टाइम भी खत्म हो गया। बस ऊपर आते हैं तो फरमाया कि देखें, सबा उन अलैहिम अंजरतहुम अम लम तुंजरहुम ला युमिनून। ए पैगंबर, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं सोसाइटी में आपकी, फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। वो ऐसे हैं उनको हजारों साइंस और बोर्ड और गाइड देने वाली चीजें उनके सामने आती हैं, वो इधर से सुनते हैं, इधर से निकालते हैं, करते वही हैं जो अपनी होती है, करते हैं वो वही उनकी अपनी, क्योंकि वैसे भी वो इस फार्मूले के कायल हैं, सुनो सबकी करो अपनी, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है, सुनो सबकी करो सच की, हक की, न कि अपनी। मैं कुछ हक पर, हक का मैयार थोड़ा हूं। तो लिहाजा जो है ये इन्नमा तुंज़िरु मन तबअ ज़िक्र व खशिया रहमान बिलगैब फबशिरहु बिमग़फिरतिन व अज़रिन करीम। या 12वीं आयत रह गई कि जिसके अंदर जो है काफी सारे मैसेजेस हैं कि इंशाल्लाह तआला की आने वाले जो तफसीर का अगले हफ्ते में दर्स होगा उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मदिन खातमन नबियीन व सय्यिदल मुरसलीन व अला इत्रातिह तय्यिबीन अत्ताहिरीन। परवरदिगार आलम से दस बदुआ है, परवरदिगार तुझे तेरी इज्जत व जलालत का वास्ता, तुझे तेरे अंबिया व औलिया का वास्ता, परवरदिगार तुझे खातमुन नबियीन व रहमतुल आलमीन सय्यिदुल मुरसलीन का वास्ता, उनकी पाक व ताहिर आलो इतरत का वास्ता, परवरदिगार तुझे खातमुल औसिया वल वसीयीन साहिब अल असरी व जमानी वल व जमीन अल इमाम अल हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी सल्लल्लाहु वसल्लमहु अलैहि का वास्ता, परवरदिगार कि उनके अय्याम योम विलादत करीब, या आज की रात या कल की रात, हस्ब इख्तलाफ चांद की तारीख है, परवरदिगार इस इतने अजीम जो शब कदर के बराबर सवाब और अजर रखने वाली रात है, परवरदिगार इस रात के बदले में आलम इंसानियत से परवरदिगारा ये जो वबा आई है इस वबा को उठा दे, इस वबा का खात्मा फरमा। उम्मत मुस्लिमा खासकर और मोमिनीन बिल अख़स परवरदिगारा जहाँ कहें पर भी हैं इस वबा से अपने हिफ्ज व अमान में जगह इनायत फरमा। परवरदिगारा ईदी के तौर पर हम सब के नसीब में मारिफत दीन, मारिफत इमाम ज़माना और इस तरह की मुश्किलात और मसाइब के सामने जो आसरे जहूर के नजदीक होंगी, सब्र और तहमुल और बसीरत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करो। परवरदिगारा हम बंदगान मोहताज हैं, बंदगान फकीर और असीर हैं तेरी दरगाह के, परवरदिगारा एक सांस के भी मोहताज हैं, पूरी सरापा जिंदगी के मोहताज हैं, जिंदगी के बाद के मराहिल के मोहताज हैं। हम पर अपनी रहमत खास सका नजूल फरमा, जितने भी यहाँ मोमिनीन और मोमिनात मौजूद हैं, इन सब के जो भी हवाइज हैं अपनी दरगाह में कबूल और मकबूल फरमा। सबसे बढ़कर सबको सेहत और सलामती अता फरमा। इस वबा की मुसीबतों से परवरदिगारा सबको नजात अता फरमा। हम सबको, हमारी फैमिलीज को, बच्चों को, अहलायाल को, खासकर हमारे उलमाए कराम और बिलाखस वो शख्सियात और हस्तियाँ जो दीन की खिदमत कर रही हैं, जो असर गैबत में हमारे दीन के सुतूनों की तरह खड़े हैं, जिन्होंने दीन का बोझ उठाया हुआ है, परवरदिगारा नजफ में उलमाए कराम मराजे उजाम खासकर आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी, इसी तरह ईरान में जो कि क़िबला तशय्यो है, परवरदिगारा वली आमर मुसलमीन और रहबर मुसलमीन हजरत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनाई अल हुसैनी हफिज़हुल्लाह, परवरदिगारा इन सब की, और लेबनान में सैयद बुजुर्गवार और यमन में इसी तरह दीगर जगहों पर जहां जहां पर भी उलमाए कराम, परवरदिगारा इन सब की हिफाजत फरमा, तूल उम्र अता फरमा। परवरदिगारा इन सब के साये को उम्मत के सरों के ऊपर इमाम के ज़हूर तक कायम दायम फरमा बिन नबी व आलि। मैं आपसे गुजारिश करूंगा क्योंकि अहम अयाम हैं, सबसे पहले शहीदों के लिए और खासकर शहदाए मुदाफे हरम के लिए, और उसमें सर शहदाए मुदाफे हरम के सरदार आज कासिम सुलेमानी और इंजीनियर अबू मेहदी अल मुहंदिस जैसी शख्सियात के लिए, अपने अपने मरहूमीन के लिए, उलमा वाइजीन खुतबा जाकरीन और तमाम जो है मराजे उजाम जो इस दुनिया से चले गए हैं, खासकर जो है फख्र तशय्यो हजरत इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैहि रहमहुल्लाह मन यक्रा अल फातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات على محمد وآل محمد. मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। अब मेरे पास तो थोड़ा टाइम है, जो भी को अगर कोई मुलाहिजा किसी की तरफ से है तो।
आगा एक क्वेश्चन है प्लीज।
जी जी फरमाए।
आगा एक्चुअली दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। एक तो आपने ये फरमाया था कि अभी के जैसे कुछ लोगों ने कहा कि जो है वो मेजॉरिटी का फैसला और उसकी मिसाल दी इमाम अली के टाइम से, तो वो मुझे इसलिए थोड़ी सी परेशान कुन मिसाल लगी कि वो तो खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि जब मेजॉरिटी की बात मानी जाए तो उम्मत इमाम अली जैसे लीडर से महरूम हो जाती है और ना अहल लोग आके बैठ जाते हैं सर पे, तो ये तो उल्टा कॉन्ट्रडिक्टरी बात ही हो गई के बजाय इसके कि उसको इस तरह लिया जाए, उसको तो इस तरह लेना चाहिए। और दूसरी बात आगा उसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपने बात की, तो क्या हम एज अ उम्मत मेंबर के पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जो हमें ये सारे डिफिकल्टीज हो रही हैं कि ना है लोग मेंबर पे बैठते हैं, क्योंकि एक मेंबर से इमाम खुमैनी ने क्या किया और एक मेंबर से रसूल अल्लाह ने किस तरह दीन फैलाया, तो मेंबर के पावर को और मेंबर की तहारत को क्या हमें अपने दिमाग में उसको सही मकाम देने की जरूरत है?
देखें दो चीजें बहुत अहम है। अवलन ये मेंबर जो है तकद्दुस रखता है। तकद्दुस रखता है मतलब क्या, एक किस्म की यहाँ पर कदासत है। और दूसरी चीज ये जो मेंबर है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखता है। जिम्मेदारी मतलब क्या, यहाँ वो आए जो दो कम से कम मिनिमम चीजें उसके अंदर मौजूद हों, एक इल्म, दूसरा उसके मुताबिक अमल। ये दो चीजें यहाँ रखता हो। इल्म मतलब ये कि लोगों को आके वो एजुकेट करे, शऊर दे के जाए, एंटरटेन करके ना जाए। दो अलग चीजें, लोगों का एक आप जो है एक घंटा लोगों को आप बेहतरीन इंजॉयमेंट फराहम करते हैं, ठीक है, कोई गलत रास्ते से नहीं किया है आपने, उसमें कोई नऊज़ु बिल्लाह कोई बातिल या लघु चीज नहीं लाया, यानी बातिल सरी लघु सरी जिसको कहते हैं लघु आप या है। लेकिन आपने कुछ दिया भी नहीं है, ना फिक्र बनी है, ना शऊर दिया है, ना कुछ है, सिर्फ और सिर्फ आपने एक हल्ला गुला करके आप चले गए हैं। अगर उस मेंबर के अख्तिताम के बाद लोगों से क्वेश्चन किया जाए कि जनाब अली ये फरमाएं आप में क्या पड़ा है, आपके किरदार में कोई असर पड़ा है, आपकी मालूमात में कोई इजाफा हुआ, ऐसी मालूमात जो जिससे आपके करेक्टर बनाए मोमिन बने वाकया, वो जो है कुरान जिसकी डिफिनेशन देता है, अहले बैत जिसकी डिफिनेशन देते हैं, तो इस तरह की कोई चीज आपको मिली है नहीं, तो फिर तो जाहिर है कि तो वही मेजोरिटी पसंद करती है या नहीं करती है, कोई मानी मीनिंग्स नहीं होती है यहाँ पर। मेजोरिटी की कोई मीनिंग नहीं, अब मेजोरिटी डिमांड कर लेगी कि हमने जो है ना वो ढोल ढमाकों के साथ यहाँ पर जश्न मनाना है, जिसमें जो है क्या कहते हैं शी मेल्स को लाकर डांस भी कराया जाएगा, जैसे कि अभी हुआ है, अभी हालांकि कोरोना आया हुआ है तो भी वहाँ बाज इलाकों में हमारे मेजोरिटी, मैं पाकिस्तान का हूँ तो मैं अपने मुल्क की मिसाल देता हूँ, वहां पर हुआ, मेरे पास वीडियोज आई हुई है, वो लाके मुजरे करा रहे हैं। तो अब एक जो है ना, एक तो ये सूरत हाल है हमारे सामने, तो हमें जरूरी है कि मेंबर का तकद्दुस बहाल हो। तकद्दुस मतलब क्या? मेंबर पे वो आए जो इल्म रखता है। इल्म का मयार क्या है भाई? हर चीज का, ये तो दो जमा दो चार की तरह है। पता है हम किसको डॉक्टर कहेंगे, किस आदमी को कहेंगे इंजीनियर, किसको कहेंगे वकील, किसको कहेंगे टीचर, किसको कहेंगे कि ये बंदा जो है अकाउंटेंट है मसलन, जिसने अकाउंटेंट पढ़ा हो, जिसने हासिल किया हो, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं होता ना किसी को। किसको हम हाफिज कहते हैं, जिसने कुरान हिफ्ज किया हो? किसको हम मुहद्दिस कहते हैं, जो हदीस के उलूम को जानता हो, जिसने पढ़ा हो? पढ़े बगैर तो किसी के ऊपर वही नहीं उतरती। तो अब मेंबर पे ऐसे अफराद आ जाएं, पहली बात तो ये आ गई कि इल्म का मसला है। अब आते हैं दूसरी तरफ का मसला। मुमकिन है कि एक आदमी ने पढ़ा हो, अच्छी तरीके से सीखा भी हो, लेकिन जो है वो अपने इल्म पर अमल करने के बजाय हवाए नफसानी का शिकार हो। मेंबर उसके लिए टूल है पैसे कमाने का, मेंबर उसके लिए टूल है अपनी शोहरत और दुकान बनाने का, मेंबर को वो कंप्रोमाइज करता है मेंबर के साथ, जहां पर एक तरफ जो है आती है सच कहना है और सही बात कहनी है, और या क्या कहते हैं दुरुस्त तरीके से हैंडल करना है, दूसरी तरफ ये है कि उसके शोहरत को नुकसान पहुंच रहा है या उसकी जो माजरत के साथ जो हदिया है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो वो उसमें कहता है जी मेरा हदिया और मेरी जो पॉपुलैरिटी है वो तो कमेंटमेंट मेरी कम होती ना जाए बल्कि हर साल बढ़ती जाए, मेरे अशरे बढ़े, मेरे वो बढ़े, दूसरी तरफ से जो है मेरे लिए जो है ना ये इस पे तो मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। उसकी फिर कई बहाने होते हैं, जाहिर है ये हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया था। तो बहरहाल ये एक बड़ी मसूलियत है। इसका एक पहलू ये भी, अवाम के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है। मैंने इसीलिए कहा जहां अक्सरियत अवाम के इकट्ठे होकर फैसला करने से सच और हक साबित नहीं होता, लिहाजा जरूरी है कि वहीं पर अवाम की जो आम अफराद हैं बानियान वजालिस हैं, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप इन्वाइट करते हैं, आप किसी को बुलाते हैं, आप मेंबर पर बिठाते हैं, आप दाद देते हैं, अगर आप जो है ना ये कितनी बड़ी है कि आप क्यों गाय बेड़ बकरियों की तरह नीचे मेंबर के नीचे बैठे कि एक शख्स मेंबर के ऊपर बैठता है और ऐसी ऐसी हरकतें करता है, या अभी टीवी पे आता है और टीवी पे आकर वो कहता है जी कि मैं कोरोना वायरस का इलाज जानता हूं, मैं नहीं बताऊंगा, मेरा मजाक उड़ाया जाता है, तो ये आप इसी को फिर वाह वाह करते हैं बैठ के जो है ना इसके नीचे। कोई ऐसा नहीं होता जुरतमंद की खड़ा हो जाए। आप इस तरह अंदाजा लगा लें, बातिल के लोगों को देखें, खवारिज जैसे लोग, बातिल थे ना खवारिज, जिनके साथ जंग की मौला ने, मौला के मेंबर के सामने खड़े होकर तोहीन करते थे, वो तो तोहीन करते थे, या क्वेश्चंस भी करते थे, जब क्वेश्चन करते थे मौला आंसर करते थे, तोहीन करते थे तो आप असाब को कहते थे कि इनको बिठाओ अपनी जगह पे, डिस्टर्ब मत करो मजलिस को, इनको वो कर दो। यानी हमारे पास इतनी जुरत नहीं है कि बातिल कोई मेंबर पे बैठा हुआ है और हम जो है हक का सवाल भी नहीं कर सकते, इखलाक के दायरे में रहकर कोई उठ के नहीं कर सकता अल्लामा क्या कर रहे हैं ये आप, या आप कहाँ से क्या बोल रहे हैं, या आप किधर मुर्दे जिंदा करते फिर रहे हैं, और किधर जो है ना अजीब व गरीब किस्म की बाजारी किस्म की दलीलों से आप मजहब को साबित करना चाहते हैं, आप कैसे जो है ना कभी जो है आप क्या कहते हैं गाड़ी के पेडल और गेयर से आप मजहब को साबित करते हैं, कभी आप जुलजना के हरूफ की तरकीब के अबजदी के जरिए से करना चाहते हैं, कभी आप पाकिस्तान क्रिएट करते हैं, कभी कायजम बनाते हैं, और भी बहुत सारी मिसालें हैं। तो ये तो इतनी चीप किस्म की हरकतें क्यों कर रहे हैं आप मेंबर पर? आलिम दीन इल्म की बात करता है, लॉजिक की बात करता है, एक भी किसी इमाम से ऐसी कोई दलील दिखाएं जो इस किस्म की दलीलें हों जिसमें इमाम ने यह कहा हो कि बस मसलन क्या कहते हैं पांच और बारह और चौदह इकट्ठे हो गए तो पाकिस्तान बनता है, भला ये होता है तो जुलजना से जिन्ना बन गया था, ऐसी कोई चीप दलीलें दी हैं? मजबूत दलील, लॉजिक, दुनिया का कोई माइकल लाल चैलेंज नहीं कर सकता उसको। हमारी नाजुल बलागा जैसी किताब को क्यों लोग जो है वो इतनी वो करते हैं कि एक क्रिश्चियन आता है उसके ऊपर शरा लिखता है जोर जोरदार, इतनी इंपॉर्टेंस देता है, एक क्रिश्चियन जो कि मुसलमान भी नहीं है, वो नाजुल बलागा पढ़ता है तो उसके बाद वो जो किताब लिखता है मौलाए कायनात के ऊपर, निदाए अदालत आसमानी की आवाज अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे ये इस तरह है, डॉक्टर आयशा बिनत शाती मिस्र की इतनी बड़ी स्कॉलर हैं, सानिया ज़ारा ज़ैनब कुबरा सरवर की हयात तैयबा पढ़ती हैं, किताब लिख लेती हैं। अब ये बताएं, ये तो आपका मजहब है, यहाँ पर आप देखें जो यूरोप के जितने गैर मुसलमान हैं, जो जो लॉजिकल जो बातें हैं उसको स्ट्रासबर्ग पे यहाँ फ्रांस में इकट्ठे हो जाते हैं, साइंटिस्ट भी इकट्ठे होते हैं, उलमा भी इकट्ठे होते हैं मुख्तलिफ मजाहिब के, वो छठे इमाम के ऊपर किताब लिखते हैं सुपर मैन इन इस्लाम के नाम से, या सुपर ब्रेन इन इस्लाम के नाम, ठीक है, अपने तरीके से लिखा है, और कहते हैं जी जो जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं वो लॉजिकल हैं, साइंसी पैरामीटर्स में भी चेक किया तो प्रूफ हो रही है, और लॉजिक से भी चेक करते हैं, दलील से भी चेक करते हैं तो बिल्कुल ऐसी है, कोई इलॉजिकल चीज नजर नहीं आती है। ये एक ऐसा मजहब है जितना दलील कुरान मजीद सूरत, आप आते हैं ऐसे चीप बाजारी किस्म की दलील, पब्लिक है नीचे खुश हो रही है, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जब उनसे कहते हैं कि साहब जरा ख्याल करें इनको ऊपर लेके आए तो कहते हैं नहीं ये नीचे ही है, नीचे रहेंगे, आप इनके साथ ऐसी ही गुफ्तगू करें, बस अपना काम चला के चले जाएं। तो ये तो पैगंबरों का काम नहीं है, उलमा वारिस अंबिया हैं तो ये वरासत वाले काम तो ये नहीं हुआ, वरासत जाहिर है कोई मीरास में तो नहीं है, इल्म में है और जिम्मेदारियों में है, वरासत मतलब अंबिया के उसी से एक दो गोंट मिलते हैं और जिम्मेदारियों के अंदर है जो उलमा ने अदा करना है, जिम्मेदारी अदा नहीं करते सिर्फ पैसा और हदिया लेने के लिए तो वरासत नहीं है, मेंबर पे चढ़ के उछल कूद करने के लिए तो वरासत नहीं होती है, वरासत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंबिया आरों से चीरे गए थे, आपको भी इस हद तक जाना पड़ेगा, आरों से चीरे तो चीरे, अंबिया और उसकी औलादों के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, खानदान किस्मत तहारत में से 11 के 11 शहीद हो गए, उनके औलाद और बच्चों को भी शहीद किया गया, किसी को बेचारे तितर बितर हो गए, सारे सादात इंडिया भाग गए, कोई इधर ईरान में आके पनाह लेने लग गए, कोई वस्त एशियाई रियासतों में, कोई अफ्रीका भाग गया, सादात को चुन चुन के तलाश कर दी, ये तो इस तरह की कुर्बानियां दी हैं इन्होंने माजी में, तभी जो है ये वरासतुल अंबिया है। उलमा भी इसी तरह है, शहीद अव्वल और शहीद सानी को आप उठा के देखें, किताब लिखता है जिसको आज हर आलिम पढ़ता है हौजे के अंदर, उसियाई खत्म होती है जेल के अंदर, किताब जो लुमा है फिका की इश्तिहाद की जो किताब है इश्तिहाद का, इसको पढ़ने के बाद इश्तिहाद की तरफ इंटर होता है आदमी, वो अपने खून निकालता है, खून निकाल कर उस खून से बाकी किताब को लिखता है। ये शहीद अवर सानी को इन्होंने घोड़े के उसके साथ बांध कर रस्सियों से खींच 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 कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके मार दिए। उलमाए कराम तो ये शहीद बाकर सदर को आप देखें, बाकी शख्सियात को देखें, बिनतुल हुदा को देखें तारीख में, अभी फिर आप इस तरफ आ जाए इमाम खुमैनी को देखें और आप दीगर शख्सियात को देखें, बरसगीर के अंदर भी इसी तरह है, जो है शहीद आरिफ हुसैनी है, दीगर शख्सियात दुनिया में, अभी शेख ज़रदक्की को देखें आपके सामने, ये भी तो आलिम दीन नहीं है, वो जो मेंबर पे आके नेपाल में मुर्दे जिंदा करता है वो भी मेंबर पे बैठा हुआ है ना, शेख ज़रदक्की भी तो बैठा हुआ है, आप देखें इसके घर में कितने शहीद है, खानदान के कितने, खुद इसकी अपनी हालत क्या है देख लें। अब उलमा वरासतुल अंबिया ये मेंबर के वारिस ये है, ये से एक बाकिरदार लोग, अब इल्म भी है किरदार भी है, सिर्फ इल्म नहीं है कि लोगों को बेवकूफ़ बना ले, कलाबाजियां खेले और लोग हैं कि वाह वाह करके खुश हो जाएं और कहें बिल्कुल सही है ये बात। बहरहाल टाइम हो गया है अजान का, मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई, आप सब को मौला आबाद रखे खुश रखे और इस वबा से सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस वबा के सामने सब्र व जमील अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला, दुआ हमेशा करते रहें, अभी खास कर इन अय्याम में दुआए इमाम के ज़हूर के लिए दुआ करें, आमाल शब जो है निमे शाबान के आमाल की तरफ भी मुतवज्जे रहें, बहुत ये रातें जो है ये फुर्सतें बल्कि कहूँगा ये फिर हाथ में ना आए, मुमकिन है कोरोना वायरस ने फुर्सतें हमें फराहम की हैं इस वक्त इंशाल्लाह ताला, और परवरदिगार आलम से दस बार दुआ है कि ये जो इस वक्त कोरोना की वजह से दुनिया में बहुत सी चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं या तब्दीलियां नजर आ रही हैं, परवरदिगारा इस तब्दीली के अंदर जमीन व जमान के वारिस के मुंतजरीन को ये तौफीक अता फरमा कि वो इस तब्दीली की डोरियों को अपने हाथ में लेकर तेरी मर्जी व मंशा के मुताबिक कायनात को तब्दील कर सकें। परवरदिगारा जो मुस्तज़ाफीन हैं उन्हें इस कोरोना के बाद ताकत व कुव्वत अता फरमा, जितने भी मुस्बित ख्यालात के लोग हैं जो बड़े आहदाफ रखते हैं इलाही नूरानी मलकूती आहदाफ रखते हैं दुनिया के अंदर जिंदगी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से जीते हैं और मुंतजरीन हकीकी है मौजवान, परवरदिगारा उन्हें तौफीक अता फरमा कि दुनिया को तेरे वली के जहूर की पटरी के ऊपर चढ़ा सके, उन्हें तौफीक अता फरमा कि पूरी दुनिया को तेरे वली के जहूर के लिए तैयार कर सके, जमीन हमवार कर सकें। परवरदिगारा उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद व वहदत व यगानियत अता फरमा, ओमनीन जहां कहें पर बसते हैं उनको आबाद हो शाद फरमा। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मुगेश भाई फिया मानिल्ला
फिया मानिल्ला।